कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक के 11वें अध्याय के 27वें पद में इसराइल के परमेश्वर को न्यायी कहा गया है। परमेश्वर का जीवित वचन और हमसे क्या कहता है, ये सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। आओ मिलकर हम करें ईश्वर का धन्यवाद, बीते क्षणों में संग रहा है, अभी है मेरे साथ। जिसने हमारे हाथ खुद का जान दिया, अभी है मेरे साथ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इन दिनों हम न्यायों की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने देखा है कि इसराइल बार बार परमेश्वर से दूर हो जाता था और परमेश्वर दंड स्वरूप उन्हें किसी न किसी अन्य जाति के अधीन कर देता था कि उत्पीड़न के द्वारा वे उसके निकट आएं, और जब वे कष्टों में उससे पुकारते थे तब वह अपनी दया से या दया में होकर किसी कमजोर या हीन मनुष्य को आत्मा प्रदान करके उन्हें छुटकारा दिलाता था। इसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें बद्दुओं के आतंक से छुटकारा या मुक्ति दिलाई, जिसमें एक दीनहीन मनुष्य गिदोन परमेश्वर द्वारा उनका न्याय चुना गया और गिदोन की अगुवाई में उन्हें 40 वर्ष शांति और समृद्धि प्राप्त हुए। परंतु गिदोन से एक भूल हो गई, उसने अंतर जातीय विवाह किया और एक रखेल भी रख ली। उस रखेल का पुत्र अबीमेलेक एक दुष्ट जन था जिसने बलपूर्वक इसराइल पर 3 वर्ष शासन किया। परमेश्वर ने उसे और शकेम निवासियों को उनके कुकर्मों का दंड दिया। अंततः अबीमेलेक गृह युद्ध में मारा गया। उसके बाद तोला न्यायी बना, परंतु उसने कोई भी विशेष काम नहीं किया। और आज हम तोला के बाद गिलादी याइर के न्याय होने के बारे में देखेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं ऐसे सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम दूर में भी रहकर आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकते हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आज जो कुछ भी हम सीखते हैं उसके लिए आप हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि आज के इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए है, और विशेष करके उनके लिए जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो किसी न किसी प्रकार के रोग से पीड़ित हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं और अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, या किसी प्रकार के पारिवारिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप उन पर कृपा दृष्टि प्रदान करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, और होने दे प्रभु कि आप उनके न्यायी, आप उनके परमेश्वर बन जाएं, और आज के अध्ययन के द्वारा वे अपने जीवन में आपको देखने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि तोला के बाद गिलादी याइर न्यायी बना, तो आइए हम पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 3-5 पद। लिखा हुआ है, उसके बाद गिलादी याइर उठा और वह 22 वर्ष तक इसराइल का न्याय करता रहा, और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बोत्याइर कहलाते हैं। और याइर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। मेरे मित्रों, इस पुरुष की एक ही उपलब्धि का उल्लेख किया जाता है कि उसके 30 पुत्र थे और उसने उन 30 पुत्रों को गधे दिलवा दिए थे। उसने उन्हें महंगी कारें नहीं दिलवाई थी, उन्हें गधों पर सवारी करते देखना बड़ा ही विचित्र लगता था। मेरे मित्रों, याइर की कहानी में मेरे सामने तीन बातें आती हैं। पहला, निरुद्देश्य समृद्धि, दूसरा, प्रभाव रहित बड़प्पन, तीसरा, अधिकार से रहित प्रतिष्ठा। उन तीनों में गधा समृद्धि का प्रतीक था, गधा मनुष्य के धनवान का दायोतक था। उदाहरण के लिए न्यायों की पुस्तक अध्याय 5 उसके पद 10 में देखें, लिखा है, हे उजली गदहियों पर चढ़ने वालों, हे फर्शों पर विराजने वालों, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो। मित्रों, यह पद ऊंचे स्तर मनुष्यों या उच्च स्तरीय कर्मचारी वर्ग को संबोधित करता है। अतः गधा ऐश्वर्य का प्रतीक था और राजाओं की सवारी था। इस विषय प्रश्न भी किया जाता है कि उस समय क्या घोड़े नहीं थे? जी हाँ, थे, परंतु गधा शांति का प्रतीक था और घोड़ा युद्ध का। उस युग में घोड़ों का आयात किया जाता था, परंतु गधा शांति और राजा का चिन्ह था। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि मसीह यीशु भी गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आए थे। हम जकरिया के पुस्तक अध्याय 9 उसके 9 पद का गलत अर्थ निकालते हैं, जहां लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रियो, जकरिया के कहने का अर्थ यह नहीं था कि गधे की सवारी करने के कारण वह दीन हुआ। उसके कहने का अर्थ यह था कि वह राजाओं की सवारी करने के उपरांत भी दीन है। यदि वह राजा ना होता तो गधे की सवारी करके यरूशलेम में प्रवेश करना और जय घोष तथा हुसाना आदि सब कल्पना मात्र ही होता। मित्रों, याइर धनवान और प्रतिष्ठित जन था, उसने अपने पुत्रों को गधे खरीद दिए थे। जैसा कि आज बहुत से घरों में 30 गैरेज हैं। मित्रों, यह एक दयालु पिता का चिन्ह है। वह दयालु था और मेरे विचार में उसने अपने पुत्रों को बिगाड़ दिया था। वे जो भी चाहते वह उन्हें दिला देता था। वे विलासिता का जीवन जी रहे थे, जैसा कि आज बहुत सारे बड़े घरों में बच्चे जीते हैं। संभवतः गधे भी अलग अलग प्रकार के थे और याइर अपने पुत्रों को सबसे नया गधा दिला देता था। मित्रों, क्या इन गधों से परमेश्वर का महिमा हो रहा था? क्या इन गधों के कारण याइर एक अच्छा न्यायी बन पाया था? क्या गधे मनुष्य के लिए आशीष का कारण थे? क्या उसका एक एक भी पुत्र मिशन या प्रभु की सेवा में जाता था? जी नहीं, वे गिलाद में रहते थे। और सच तो यह है कि गधे रखने में कोई बुराई नहीं है, दूसरी ओर अनेक पुत्रों और गधों में समय बिताने में कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक बात है जिसे हमें ध्यान देना है। हमारा प्रभु भविष्यवाणी पूरी करने के लिए और अपने आप को राजा दर्शाने के लिए गधे पर सवार यरूशलेम आया और लोगों ने होसाना के नारे लगाए। इस बात से शैतान अप्रसन्न हुआ और धर्मगुरु उसके नगर प्रवेश एवं नारों के विरुद्ध थे। याइर के गधों के कारण लोगों ने एक बार भी होसाना या नारा नहीं लगाया। मेरे मित्रों, मेरे विचार में जब उनमें से एक भी गधा रेंगता तब शैतान मुस्कुराता था और दर्शकों का मनोरंजन होता था। याइर निरुद्देश्य था, अर्थात बिना उद्देश्य और बिना समृद्धि का एक चित्र प्रस्तुत करता है। मेरे प्रियो, यह एक संकट स्थिति है। नूह के युग में यही दशा थी, वे विवाह करने और करवाने में व्यस्त थे। यही बात सुलेमान के बंदर और मोर के व्यापार में प्रदर्शित होती थी। वह मोर सुंदरता के लिए और बंदर मनोरंजन के लिए आयात करता था। और कई वर्ष पूर्व एक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने विदा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एक उद्देश्य वाक्य चुना था, निरुद्देश्य जोश मूर्खता है। ध्यान दीजिए, निरुद्देश्य अर्थात बिना उद्देश्य का जोश मूर्खता है। वैसे तो यह उद्देश्य वचन अधिक मायने नहीं रखता है, परंतु निश्चय ही आज की परिस्थिति में प्रकट करता है। आज की समृद्धि उद्देश्य निरुद्देश्य है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है? क्या वह निरर्थक है? क्या वह बिना उद्देश्य का है? क्या आपको जीवन निरस प्रतीत होता है? शेक्सपियर ने, जो एक लेखक थे, अपने नाटक हेमलेट में लिखा, इस संसार को व्यवहार में लेना मुझे कैसा निरस, पुराना और अलाभकारी लगता है। आज हमें जो आवश्यकता है वह दिशा निर्देश और आत्माओं की है। हमें एक उद्देश्य चाहिए और मसीह का उद्देश्य किसी भी मनुष्य के लिए एक चुनौती है। वृद्ध याइर निश्चय ही एक न्यायी था। जी नहीं, याइर का जीवन अधिकार रहित प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वह समुदाय का एक माननीय जन था। पुलिस ने संभवतः उसके पुत्रों का कभी चालान नहीं किया होगा, परंतु पद 5 याइर के विषय में स्मरण योग्य कोई बात नहीं कहता है। उसे दफन किया गया, अर्थात दफना दिया गया, तो किसी अज्ञात स्थान में। उसने एक भी विशेष कार्य नहीं किया, उसने एक भी उपयोगी सेवा नहीं दी, उसने कभी विजय प्राप्त नहीं की। उसके पास 30 गधे तो थे, परंतु आत्मिक बल नहीं था। मित्रों, आज कलीसिया ने अपना बल खो दिया है। याइर में हम कैसा परिदृश्य देखते हैं? एक बार मैं झांकियां देख रहा था और उस झांकी का विषय था तैयार रहो। तभी एक झांकी पेट्रोल समाप्त हो जाने के कारण मेरे ही सामने आकर रुक गया। मुझे हंसी आ गई। वह झांकी एक तेल की कंपनी की थी और उन्हें पेट्रोल की कमी तो होना ही नहीं था। उन्हें देख मुझे मसीहों का स्मरण आया। वे अति सुंदर हैं, परंतु उनमें बल नहीं है। वह न्यायी याइर है। उसने कुछ नहीं किया, वह मर गया और गाड़ा गया। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि पलिस्तियों और अमोनियों के अधीन 18 वर्षीय दासत्व। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 6 पद में। तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और आराम, सिदोन, मोआब, अमोनियों और पलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग और उसकी उपासना न की। मेरे मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो इसराइल को अनुभव से सीख ले लेना था कि मूर्ति पूजा के कारण वे संकट में पड़ जाते हैं, परंतु इस बार उनकी मूर्ति पूजा का दंड था पलिस्तियों और अमोनियों के दास बने और 18 वर्ष दासत्व में रहें। मेरे प्रियो, मानवीय स्वभाव ही पतित है, अर्थात गिरा हुआ है। यर्मिया ने कहा, यर्मिया की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। आप और मैं निश्चय ही मन को समझ नहीं पाते हैं। मेरे और आपके लिए यीशु से 1000 वर्ष पूर्व के इन मनुष्यों की ओर उंगली उठाकर यह कहना आसान है, तुमने गलत किया, इसकी अपेक्षा कि हम अपने कामों को देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। मेरे मित्रों, हम आज के युग में क्या कर रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि आज कलीसिया में अधिकृत ईश्वर त्याग है? यह मानव स्वभाव है, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन कारण क्या है? हम गलत स्थान में सहायता की भीख मांग रहे हैं। केवल परमेश्वर के निकट आने से ही हम सही मार्ग पर होंगे। मैं जानता हूं कि मेरी बात पुराने युग की और कटु प्रतीत होगी, परंतु मसीह से 1000 वर्ष पूर्व भी यही मानवीय धारणा थी। इसराइल देवी देवताओं के पीछे गया और सच्चे परमेश्वर का त्याग किया, और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, तब यहोवा का क्रोध इसराइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिस्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कोई साधन यदि उसे निराश करे तो वह उसे हटा देता है। हम प्रायः सोचते हैं कि परमेश्वर को कलीसिया बनाए रखना है, वरन कोई विशेष कलीसिया, और वह उस देश की भी बनाए रखेगा जो परमेश्वर के दासों को भेजता है। परंतु मैं आपसे स्पष्ट कहता हूं और कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को हम में से एक की भी आवश्यकता नहीं है। वह हम पर निर्भर नहीं है, हम ही हैं जो उस पर निर्भर हैं। मेरे प्रियो, इसराइल संभवतः इस समय सर्वाधिक पतित अवस्था में था, उनकी दशा बहुत बुरी थी। न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब इसराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, या हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। मेरे प्रियो, अंततः समय ऐसा आया कि वे अत्यधिक निराश हो गए। अब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। इतिहास का चक्र चल रहा है। इस बार क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं न्यायों की पुस्तक 10 अध्याय उसके 11 से 16 पद में। यहोवा ने इसराइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अमोनियों और पलिस्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएंगे। इसराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा ले। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर कैसा दयालु एवं अनुग्रहकारी है, वह अपनों की तुरंत सुनता है। आइए देखें न्यायों 10 अध्याय उसके 17 और 18 पद में क्या लिखा है। तब अमोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इसराइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। मेरे मित्रों, इसराइलियों का कोई अगवा नहीं था, यह अभक्त मनुष्यों या मानव पीढ़ी की पहचान है। आज कई वर्षों से संसार में ही अगुवाई की कमी है। हमें प्रभावी अगुवाई की आवश्यकता है, परंतु अगुवा है ही नहीं। इसराइल का भी यही अनुभव था। इस बार वे एक अति असामान्य मनुष्य की ओर निहारते हैं, जिसे अन्य परिस्थिति में वे कभी मान नहीं देते। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 11 से जारी रखेंगे, और इस अध्याय का विषय है नवा न्याय इप्ता और उसकी नासमझ शपथ। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद। इप्ता नाम गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से इप्ता उत्पन्न हुआ था। मेरे मित्रों, उसके विषय पहली बात तो यह कहूंगा कि वह एक असाधारण अगुआ था, परंतु उसका एक दोष यह था कि वह एक वेश्या का अवैध संतान था। तब हम न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब इप्ताह को यह कहकर निकाल दिया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग न पाएगा। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, जो स्त्री चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है उनके पुत्रों को सावधान रहना था। मेरे मित्रों, क्योंकि उस समय वेश्याएं अन्य जातियों में से थी। जोसेफस जो इतिहासकार है उसने लिखा है कि गिलाद की पत्नी एक अन्य जाति स्त्री थी। यहूदी लेखों में उसे इश्माइल वंशी कहा गया है। अतः इप्ताह एक अन्य जाति वेश्या की संतान था। अवैध होना मनुष्य पर जन्म से ही कलंक होता है, चाहे वह आगे चलकर कुछ हो चाहे बाद में। इप्ताह को समाज से बाहर कर दिया गया था, उसे जात बाहर कर दिया गया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार वह परमेश्वर की प्रजा में नहीं रह सकता था। मेरे मित्रों, अवैध संतान होना एक बाधा है, परंतु अनेक पुरुष इस पर विजयी हुए हैं। राजाओं, सम्राटों, सेनापतियों, कवियों और यहाँ तक कि बहुत बड़े प्रभु के दासों में भी अनेक ऐसे अमनुष्य रहे हैं जो अवैध संतान थे। इप्ताह इस कलंक से उभर आया था। हम न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, तब इप्ताह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और इप्ताह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। मित्रों, ध्यान दीजिए, इप्ताह दुस्साहसियों के जत्थे का अगुआ था। उसे अपने राष्ट्र का अगुआ बनने के लिए 3 बाधाओं को पार करना पड़ा। वह एक वेश्या की संतान था, वह समाज से बहिष्कृत था और तीसरा, वह तुच्छ समझे जाने वालों का सरदार था। वह किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो वह योग्य नहीं था, परंतु परमेश्वर ऐसे ही मनुष्य को काम में लेता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के भेद अबोध हैं। वह इस संसार के तुच्छों को काम में लेता है। परमेश्वर जिनसे सेवा लेना चाहता है उन्हें दीन भी बनाता है। उसने यूसुफ को दीन बनाया, उसने मूसा को दीन बनाया, उसने दाऊद को दीन बनाया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने भी स्वयं को दीन बनाया था। वह मनुष्यों द्वारा तुच्छ जाना गया और उसका परित्याग किया गया। वह तो कोने का पत्थर था जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, परंतु वही कोने का पत्थर था। उसके बैरियों ने कहा, हम इसे अपने ऊपर राज करने नहीं देंगे, परंतु परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया और उसे वह नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की संतान होने का दावा करने वाले असंख्य मनुष्य हैं, परंतु वास्तव में वे हैं नहीं। उनका नया जन्म नहीं हुआ है, इसलिए वे अवैध संतान हैं। आप परमेश्वर की वैध संतान तब ही बन सकते हैं जब आप मसीह यीशु में विश्वास ले आएं और उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें, अपने पापों की क्षमा उससे मांग लें। मेरे प्रियो, इप्ताह समाज से बहिष्कृत था, परंतु अब सम्मान पाता है। हम न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 4-8 पद में पढ़ते हैं, और कुछ दिनों के बाद अमोनी इसराइल से लड़ने लगे। जब अमोनी इसराइल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग इप्ताह को तोब देश से ले आने को गए और इप्ताह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा कि हम अमोनियों से लड़ सकें। इप्ताह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल न दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ताह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अमोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, गिलाद के प्राचीनों ने इप्ताह के समक्ष एक अच्छा प्रस्ताव रखा कि हमारी सहायता कर, तब तू हमारा प्रधान ठहरेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं 11 अध्याय उसके 9-10 पद में, इप्ताह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने इप्ताह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। मेरे प्रियो, इप्ता ने गिलाद के अगुओं के समक्ष एक कठिन शर्त रख दी कि यदि वे विजय पाए तो वह उनका प्रधान होगा। मरता क्या ना करता, उन्हें अपना घमंड त्याग कर उसकी शर्त स्वीकार करनी पड़ी। उनके लिए अपमानजनक बात थी कि जिसे उन्होंने अपमानित करके देश से निकाल दिया है, आज उसी के सामने भी हाथ जोड़ रहे हैं। और वह स्पष्ट कहता है कि यदि वे उसे अपना न्याय बनाएंगे तो वह युद्ध के बाद भी उन पर शासन करेगा। इन शर्तों के आधार पर वह युद्ध की बागडोर को संभालता है और उनकी ओर से लड़ता है। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है, परंतु मैं यह विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आज हमने इस अध्ययन में देखा कि परमेश्वर किस प्रकार तुच्छ और बेकार लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करता है। हमने यहाँ पर इप्ताह के जीवन से भी देखा कि जिसे लोगों ने अवैध संतान कहकर उसे निकाल दिया था, उसके सम्मुख उन्होंने हाथ जोड़े और वह उनके लिए लड़ने को तैयार हो गया। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। वह आपको भी एक महिमामय व्यक्ति बना सकता है, वसरते यह कि हम प्रभु परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित कर दें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम उसके संतान कहे जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता है, अर्थात हम स्वर्ग में भागीदार नहीं बन सकते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज आप चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के संतान बन जाएं? यदि हाँ, तो आज ही अपने पापों को आप प्रभु यीशु के नाम से स्वीकार करें, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और अपने हर एक बुराइयों से मन को फिराएं और एक निर्णय लें कि आज के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। जी हाँ मेरे मित्रों, जब आप ऐसा करते हैं तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपको आशीष देंगे और आपके जीवन में शांति प्रदान करेंगे। प्रभु आपको एक सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें: कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए: कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु अपने साथ।